ओम शांति, गुड मॉर्निंग। आज हम सभी प्यारे बाबा के 9 तारीख के महावाक्यों को सुनेंगे। मधुबन की मुरली, हर गोपी संग लगता श्याम प्यारा। सबसे बड़ी महिमा मधुबन की मुरली की है और बाबा की पढ़ाई भी वंडरफुल पढ़ाई। हम बाबा के पास आए थे, हे भगवान हमको शांति दो। बाबा ने कहा, बच्चे तुम विश्व में शांति स्थापन करने के मेरे मददगार हो। आए थे शांति के लिए, बनाया क्या बाबा ने? भगवान के साथ विश्व शांति के मददगार आए थे। भगवान हमें कुछ धन दौलत दे दो, और भगवान ने कहा तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। ये वंडरफुल पढ़ाई है। संसार में ऐसी कोई पढ़ाई नहीं, पढ़ करके राजा बने। राजा के जो बच्चे हैं उन बच्चों को पढ़ाने के लिए, रॉयल फैमिली के लिए स्कूल कॉलेजेस अलग अलग होंगे, लेकिन पढ़ करके राजा बने ऐसे आज तक कभी नहीं हुआ। सिर्फ संगम पर ही संभव है। फिर बाबा ने आज कहा, ये पढ़ाई अगर और कोई पढ़ाता, ब्रह्मा बाबा के साथ और भी कोई पढ़ लेते। ब्रह्मा बाबा के साथ और कोई गुरु आदि दिया हुआ होता और पढ़ लेते, लेकिन ये निराकार बाप आ करके पढ़ाता कैसे है? बहुत सिंपल तरीके से। इसीलिए मनुष्य मुंह जाते हैं। अगर बाबा ने कहा पढ़ाई का पता पड़ जाए तो फिर क्या हो जाएगा? आज बाबा ने 2 देशों को याद किया। भगवान आकर के पढ़ाता है तो अमेरिका जापान से भी लोग आकर के क्या करेंगे? इस पढ़ाई को पढ़ेंगे। अगर श्री कृष्ण होता तो हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं थी। निराकार परमात्मा गुप्त और साधारण रीति से बैठकर पढ़ाते हैं, इसीलिए लोग क्या हो जाते हैं? फिर अंत में क्या कहेंगे? अहो तेरी प्रभु तेरी लीला अप्रमापार कहेंगे। तो आज बाबा ने वंडरफुल पढ़ाई की विशेषता है। हम सबको भी लगता है ना वंडरफुल पढ़ाई, जैसे कल ही अव्यक्त मुरली हम सब ने सुनी। 20 साल पहले की मुरली थी। दुनिया में कोई भी पढ़ाई कोर्स आदि 10 साल 20 साल पहले के कोर्सेज चलते हैं क्या? उन सब कोर्सेज को कहते आउटडेटेड। बच्चे अपने माँ बाप को बैठ करके, माँ बाप बैठ के बच्चों को पढ़ाए तो क्या कहते? भाई आपका कोर्स आउटडेटेड है। हमारे नए नए कोर्सेस आए, और भगवान ने कल जो बैठ के 20 साल पहले की मुरली सुनाई तो हम सब ने कैसे एंजॉय किया? आज के लिए है या 20 साल पहले के लिए जरूरत थी? हर सेकेंड हम क्या फील करते हैं? बाबा के महावाक्यों को आज आज ही इस मुरली की मेरे लिए जरूरत थी। हर आयु वर्ग वाला, पढ़ा लिखा अनपढ़ा, किसी भी प्रोफेशन से जुड़ा हुआ, हर एक अपने से रिलेट करके और आज के लिए। तो ऐसे आज भी हम प्यारे बाबा के महावाक्यों को सुनेंगे, लगेगा कि ये बाबा की जो मुरली थी ना आज मेरे लिए थी। तो ऐसे वंडरफुल हमारा टीचर है। चलिए हम प्यारे बाबा के महावाक्यों को कैसे सुनेंगे? गोपी बन करके। गोपी बनना मना, गोप गोपी का मतलब बिना सुध बुध के, उनको होश नहीं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है कहाँ जा रहा है, बस मुरली मुरली मुरली, बुद्धि में क्या मुरली के थे। और पार्वती बन करके सुनना पता है आप सबको? एक झुटका आ जाना मना, तभी तो कबूतर ने सुन लिया था। तो हम सभी क्या बन करके सुनेंगे? गोप गोपी बन करके। आज प्यारे बाबा के 9 तारीख के महावाक्य है, मीठे बच्चे तुम सारे विश्व पर शांति का राज्य स्थापन करने वाले बाप के मददगार हो। अभी तुम्हारे सामने सुख शांति की दुनिया है। हम विश्व में शांति स्थापन करने वाले बाप के मददगार, और हमारे सामने भी सुख और शांति की दुनिया दिखाई दे रही है। प्रश्न है, बाप बच्चों को किस लिए पढ़ाते हैं? पढ़ाई का सार क्या है? क्यों पढ़ाते हैं और पढ़ाई का सार क्या है? आज बाबा ने कहा, बाप अपने बच्चों को स्वर्ग का प्रिंस, विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। बड़े ते बड़ा बाबा और पढ़ाई का लक्ष्य भी क्या, छोटा मोटा होगा क्या? ऊंचा टीचर जो पढ़ाएगा तो लक्ष्य भी क्या होगा? ऊंचे ते ऊंचे लक्ष्य को पाना सिखाएगा। विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे पढ़ाई का सार है, दुनिया की सब बातों को छोड़ दो। ऐसे कभी नहीं समझो हमारे पास करोड़ है, लाख है, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। इसीलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, कुछ भी हाथ में आने वाला नहीं है। इसीलिए कृष्ण को क्या दिखाया, हाथ खोला तब तो स्वर्ग आया। अगर लाख करोड़ यूं होता तो हाथ में थोड़ी स्वर्ग आएगा। किसके हाथ में स्वर्ग आएगा? मुट्ठी खोलेंगे तब गोला हाथ में आएगा। तो श्री कृष्ण के हाथ में क्यों दिखाया, खोला ना मुट्ठी। तो अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। आज का गीत है, आखिर वह दिन आया आज। कौन सा दिन? हर एक अपना अपना है। मधुबन का दिन है, बाबा के घर में बैठने का दिन है, पुरुषार्थ का दिन है, बाबा से मिलने का दिन है। अच्छा, ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, आखिर विश्व पर शांति का समय आया। सब कहते विश्व में शांति हो, फिर जो ठीक राय देते हैं उन्हों को इनाम देते हैं। नेहरू भी राय देते थे, शांति तो हुई नहीं, सिर्फ राय दे करके गए। शांति के लिए राय देने वाले बहुत आए और गए भी, लेकिन शांति तो हुई नहीं और ये अशांति होती जा रही है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कोई समय सारे विश्व भर में सुख शांति संपत्ति आदि थी, वह अभी नहीं है, फिर होने वाली है। चक्र तो फिरेगा ना, बाबा तो चक्र की नॉलेज दे रहे। चक्र जैसे घूमेगा, इसके बाद जो आएगा सुख शांति फिर से होगी। तुम संगम युगी ब्राह्मणों की बुद्धि में है, तुम जानते हो भारत फिर सोने का बनना है। भारत को ही गोल्डन स्पैरो, सोने की चिड़िया कहा जाता है। भल महिमा तो करते हैं, परंतु सिर्फ कहने मात्र। डाल डाल पर भारत की महिमा में गाया है, लेकिन बाबा ने कहा कहने मात्र पर, लेकिन कब थे ये हमें किसी को नहीं पता, बाबा के बच्चों को पता है। तुम तो अभी प्रैक्टिकल में पुरुषार्थ कर रहे हो, जानते हो बाकी थोड़े से वर्ष है या रोज है। बाबा की नजर में क्या है? बाबा की नजर में भी भारत सोने के बनने में महीने नहीं है, साल नहीं है, कितने हैं बच्चे? थोड़े से रोज है, थोड़े से दिन है। ये सब नरक के दुख की बातें भूल जाती है। तुम्हारी बुद्धि में अब सुख की दुनिया सामने बैठी है, खड़ी है, खड़ी है। बाबा बार बार कहते खड़े है, खड़ा माने पोश्चर। जैसे मिलिट्री वाले क्या होते, हमेशा कभी उनको नहीं कहा जाता बैठे हुए, खड़े हुए, खड़े होना अपने पोजीशन में है। तो ऐसे बाबा भी कहते हैं सतयुग क्या है, स्वर्ग हमारे सामने खड़ा है। जैसे आगे विलायत से आते थे तो समझते थे अभी बाकी थोड़ा समय है पहुंचने में, क्योंकि आप पहले विलायत से आने में बहुत टाइम लगता था, स्टीमर शादी में आते थे महीनों लग जाते थे, अभी तो एरोप्लेन में जल्दी पहुंच जाते हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, अब हमारे सुख के दिन आने ही आ गए, क्या कहेंगे? आने वाले, अभी तो नहीं है ना, ये आ गए हैं, क्या कहेंगे? हम सभी बाबा के बच्चे तो कहेंगे ना, आ गए हमारे लिए तो। तो बाबा कहते हमारे सुख के दिन आने हैं, जिसके लिए पुरुषार्थ कर रहे, इसलिए तो गीत था ना, आखिर वह दिन आया आज। बाबा ने पुरुषार्थ भी बहुत सहज बताया, ड्रामा अनुसार कल पहले मौफिक यह सज्जन है, तुम देवता थे, देवताओं के कितने ढेर मंदिर बन रहे हैं, बच्चे जानते हैं मंदिर आदि बना करके क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई मंदिर बना करके, बाकी दिन कितने हैं, इतने बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, अभी तक हमारे पास अयोध्या का मंदिर तो अभी बन ही रहा है, वो अभी तक बन रहा है, अब बनने के बाद बाकी, बाबा क्या कह रहे, बाबा की नजर में अभी कितने दिन है। तुम बच्चे नॉलेज की अथॉरिटी हो, कहा भी जाता है परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान ऑल माइटी अथॉरिटी है, तुम ज्ञान की अथॉरिटी हो, वह है भक्ति की अथॉरिटी वाले, बाप को कहा जाता है वह है, तुम बच्चे हो ज्ञान की अथॉरिटी, भक्ति मार्ग वाले भक्ति की अथॉरिटी वाले, और तुम बच्चे, तुम बच्चे बाप को भक्ति की ज्ञान की अथॉरिटी, और बाबा है, बाबा कौन सी अथॉरिटी वाले, एक हो गए भक्ति वाले ज्ञान वाले, और बाबा है ऑल माइटी अथॉरिटी, तीन अथॉरिटियां बताइए। तुम बच्चे नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार बन रहे हो, तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, जानते हो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं बाबा से वर्षा पाने का, जो भक्ति की अथॉरिटी है वो सबको भक्ति ही सुनाते, भक्ति मार्ग वाले चाहे कितनी भी बातें सुनाएंगे तो कौन सी कहानी, भक्ति मार्ग की कहानी, और वो भी कौन सी कहानी, 100 बार जो कहानी हम सुन चुके हैं, और जो कहानी के बाद क्या होने वाला है वो भी हमें पता है, फिर भी कहानी सुनने के लिए लोग जाते, उसके बाद क्या होने वाला है वो सारी जानकारी हमको है, फिर भी लोग दौड़ करके कहानी सुनने के लिए जाते हैं। तुम ज्ञान की अथॉरिटी हो तो ज्ञान ही सुनाते हो, सचिव में भक्ति होती नहीं, पुजारी एक भी नहीं होता, पूज्य ही पूज्य है, आधा कल्प है पूज्य, आधा कल्प है पुजारी, भारतवासियों के लिए पूज्य थे स्वर्ग था, अभी भारत पुजारी नरक बना, पूज्य थे तो स्वर्ग, पुजारी बने तो नरक, पूज्य के साथ स्वर्ग, पुजारी के साथ नरक जुड़ा हुआ है। तुम बच्चे प्रैक्टिकल लाइफ बना रहे हो, सुने बाबा ने क्या कहा, प्रैक्टिकल लाइफ बना रहे, भक्ति की कहानी सुन करके लाइफ नहीं बनी, टाइम पास हुआ, ज्ञान से लाइफ बन रही, ज्ञान टाइम पास के लिए नहीं सुना जाता, कहानी टाइम पास के लिए सुना जाता। तो बाबा की मुरली है ये हमारी लाइफ को बनाने के लिए, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार सबको समझाते रहते हो और वृद्धि को पाते रहते हो, ड्रामा में पहले से ही नोंद है, ड्रामा तुमको पुरुषार्थ कराते रहते, तुम करते रहते हो ड्रामा, जानते हो ड्रामा में हमारा अविनाशी पार्ट है, दुनिया इन बातों को क्या जाने, हमारा ही ड्रामा में पार्ट है, ड्रामा में पार्ट है, अविनाशी पार्ट है, ड्रामा करा रहा है, फिर बाबा फिलोसॉफी क्या सुना रहे, जो कहेगा वही समझेगा, बाबा क्या कह रहे, इस ड्रामा की नॉलेज को देते हुए जो करेगा वही समझेगा कि कैसे हमारा इस ड्रामा में पार्ट है। सृष्टि चक्र फिरता ही रहता है, यह वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम्हारे सिवाय किस कोई को भी मालूम नहीं। ऊंचते ऊंचा कौन है दुनिया में कोई भी नहीं जानते। बाबा कह रहे हिस्ट्री ज्योग्राफी, दुनिया में हिस्ट्री ज्योग्राफी, बाबा ने जो आकर के जो हिस्ट्री ज्योग्राफी बताया तो ये किसी को नहीं पता, चाहे कितने भी बड़े बड़े हिस्ट्री पढ़ाने वाले होंगे, लेकिन रियल हिस्ट्री, रियल ज्योग्राफी बाबा के अलावा सच्ची बातें कोई नहीं सुना पाएगा। ऋषि मुनि आदि भी कहते थे हम नहीं जानते, ये भी सच्चाई थी। नेति नेति कहते थे, अभी तुम बच्चे जानते हो। क्या जानते हो भाई? अभी तुम बच्चे जानते हो। हिस्ट्री ज्योग्राफी हम जानते हैं। क्या जानते हैं? रचता बाप है और हमको पढ़ा रहे। यह भी बाबा ने बार बार समझाया है। यहां जब बैठते हो तो देही अभिमानी होकर के बैठो। इस पढ़ाई का पहला लेसन ही क्या है, इस पढ़ाई का फर्स्ट लेसन, जब भी बैठते हो पढ़ाई के लिए देही अभिमानी होकर के बैठो, तब ज्ञान अमृत बुद्धि में स्थान ले लेगा, वरना बह करके चला जाएगा। इसलिए ज्ञान अमृत स्थान तभी लेता है देही अभिमानी होकर बैठे हैं। एक बाप ही राजयोग सिखाते हैं और वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। बाबा कहते मैं कोई थॉट रीडर नहीं हूं, हिस्ट्री ज्योग्राफी बता पढ़ाता हूं लेकिन मैं थॉट रीडर नहीं हूं। इतनी बड़ी दुनिया है, इनको क्या बैठ करके रीड करेंगे क्या बाबा? और कलयुगी दुनिया में इंसान सोचेगा तो क्या सोच रहा होगा, क्या ठगी करे, किसको मारे, किसको काटे, किसको हड़पे, यही तो सोच रहा होगा। भगवान क्या बैठ करके ये देखेगा सबके मन को? तो बाबा कहते मैं क्या बैठ करके रीड करूंगा। बाप तो खुद कहते हैं मैं ड्रामा की नूंद अनुसार आता हूं तुम्हें पावन बनाने के लिए। ड्रामा में मेरा जो पार्ट है वही बजाने आता हूं, बाकी मैं कोई थॉट रीड नहीं करता हूं। बतलाता हूं मेरा क्या पार्ट है। डायरेक्टर को खुद को आकर के बताना पड़ता है कि डायरेक्टर का क्या पार्ट है इस ड्रामा के अंदर। खुद बाबा कहते मेरा पार्ट मैं खुद आकर के बताता हूं, तुम क्या पार्ट बजा रहे हो। फिर एक्टर्स के बारे में भी बताएगा, तुम ये नॉलेज सीख कर दूसरों को सिखला रहे हो। मेरा पार्ट ही है पतितों को पावन बनाना, यह भी तुम बच्चे जानते हो। तुम तिथि तारीख आदि सब जानते हो। ऐसी पढ़ाई, ऐसी वंडरफुल हिस्ट्री बाबा बताते हैं, ऐसी पढ़ाई तिथि तारीख समेत एक्यूरेट। बाकी उस हिस्ट्री में क्या हो सकता है? आप हिस्ट्री में भी देखो, दो तीन अगर किताबें अलग अलग लिखा होगा, सन में क्या होगा, ईयर में थोड़ा वो डिफरेंस आ जाता है, लेकिन भगवान की जो हिस्ट्री है, कभी कहेगा 2000 वर्ष पहले, कभी कहेगा 2000 वर्ष पहले, एक्यूरेट। बाबा आकर के हिस्ट्री जो पढ़ाते हैं तो एक्यूरेट, तिथि तारीख समेत कोई भी मुरली उठा लो, बाबा के डेट्स में कोई चेंज नहीं हो सकते, दुनिया में भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तुम तिथि तारीख आदि सब जानते हो, दुनिया में कोई थोड़ी जानते हैं, तुमको बाप सिखला रहे हैं। जब ये चक्र पूरा करेंगे तब फिर बाबा आएंगे। उस समय जो सी चल रही वह फिर कल्प के बाद चलेगी। एक सेकेंड न मिले दूसरे से, यह नाटक फिरता ही रहता है। बाबा को नाटक को, चक्र को रोकने नहीं आए, अपनी रफ्तार से चक्र चलता रहेगा, चलता रहेगा। भगवान सिर्फ उसकी नॉलेज दे रहे, आने से नहीं आने से उसकी गति में बढ़ना घटना नहीं होता। एक्यूरेट अपने समय अनुसार चक्र चल रहा है। बाबा ने आकर के सिर्फ उसकी समझ दे दी, जानकारी दे दी। तुम बच्चों को बेहद के नाटक का पता है, फिर भी क्या हो जाता है, सही नॉलेज दे दी, एक्यूरेट नॉलेज दे दी, बेहद की नॉलेज दे दी, फिर भी बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा कहते तुम सिर्फ याद करो, हमारा बाबा बाबा है, टीचर है और गुरु भी है। तुम्हारी बुद्धि उस तरफ चली जानी चाहिए। आत्मा खुश होती है बाप की महिमा सुन करके। बाबा हमारा बाप, टीचर, गुरु, बाबा की महिमा से अंतरात्मा को खुशी की प्राप्ति होती है। सब कहते हमारा बाबा बाप, टीचर, बाबा भी है टीचर भी। सच्चा ही सच्चा है, और कैसा, दुनिया में बहुत सारे हैं, लेकिन सच्चा सच्चा, पढ़ाई भी सच्ची और पूरी। देखो बहुत अच्छी बात है, पूरी संपूर्ण पढ़ाई। इस पढ़ाई को पढ़ने के बाद हमें और पढ़ाई की जरूरत नहीं है, इसको पूरी परफेक्ट पढ़ाई। अन्य पढ़ाई देखो कोर्स करते हैं तो फिर क्या कहते हैं, अच्छा ये वाला कोर्स रहेगा, ये वाला कोर्स रहेगा, ये पढ़ाई रहेगा, इस कॉलेज से पढ़ते तो अच्छा होता, उस कॉलेज से डिग्री लेते तो अच्छा होता, कहीं ना कहीं अपूर्णता। और इस पढ़ाई में कभी भी हमें ये नहीं लगता कि हमारी कोई चीज रह गई। बाबा की पढ़ाई में संपूर्णता है। बाबा कहते सच्ची और पूरी है। उन मनुष्यों की पढ़ाई कैसे है, अधूरी है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में कितनी खुशी होनी चाहिए, परफेक्ट पढ़ाई, पूरी पढ़ाई, सच्ची पढ़ाई, और पढ़ाने वाला एक एक की बार पढ़ाते, तो इसीलिए बाबा कहते बहुत खुशी होनी चाहिए। बड़ा इम्तिहान पास करने वालों की बुद्धि में खुशी भी क्या होगी, बड़ी बड़ी है छोटी छोटी, जितना बड़ा एग्जाम उतनी खुशी क्या हो जाती है, ज्यादा खुशी भी। देखो मैं भी देखती हूँ ना, रिजल्ट आते हैं आईआईटी के, आईआईएम के, जो आईएएस के आते हैं, तो देखना उस समय तो ऐसे घरों में जिन बच्चों ने पास किया होगा उनका तो पारावार नहीं रहता। छोटे छोटे एग्जाम में छोटी छोटी खुशी, और बड़े बड़े नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो उनकी खुशी भी क्या हो जाती है, दूर दूर तक फैलती है। तुम कितना ऊंच पढ़ते हो तो कितनी कापारी, बाबा क्या करें आज शब्द कितनी होनी चाहिए, तुम्हें तो बहुत खुशी होनी चाहिए, कापारी खुशी होनी चाहिए। भगवान बाबा बेहद का बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, तुम्हारे तो क्या होना चाहिए। देखो भाई सभी एक बार खुश होकर के बताओ, रोमांच खड़ा हो जाना चाहिए, सबकी शक्लें हो रही ना, रोमांच खड़े होने वाले, सब खुश हो रहे ना, खुशी हो रही नहीं हो रही, रोमांच खड़े हो जाना चाहिए। वही एपिसोड रिपीट हो रहा है, फिर बाबा क्या करे, बच्चे वही एपिसोड, सिवाय तुम्हारे किसी को भी पता नहीं। पता कैसे पड़ेगा हमारी पढ़ाई का, जब हम रोमांच खड़े हो जाएंगे, कापारी खुशी चढ़ेगी, शब्दों से दुनिया को नहीं पता पड़ेगा, बोल से नहीं पता पड़ेगा, हमारी कापारी खुशी से लोगों की आंखें खुलेगी। तो इसीलिए बाबा क्या कह रहे हैं बच्चों को, बच्चे तुम्हारी खुशी बेहद की होनी चाहिए, कल्प की आयु ही बढ़ा दी है तुम्हारी बुद्धि ने, अब 5000 वर्ष की सारी स्टोरी चक्र चलता रहता है, जिसको ही स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। बच्चे कहते हैं ये सब कुछ बाबा ने बताया, पढ़ाई है ऊंची है, खुशी होनी चाहिए, और किसी को पढ़ाई नहीं होती है, रियल पढ़ाता हूं। उसके बाद बच्चों ने रिपोर्ट क्या दिया, कहते हैं बाबा तूफान बहुत आते हैं। देखो इतना नशा बाबा ने चढ़ा दिया, और बच्चे क्या कहते हैं, क्या करे बाबा, तूफान बहुत आते हैं, हम भूल जाते हैं। बाबा कहते तुम किसको भूल जाते हो, देखो तो सही किसके लिए कह रहे हो, बाप जो तुमको डबल सिरताज विश्व का मालिक बनाते हैं उनको तुम कैसे भूलते हो, दूसरे किसको भी, अन्य किसी को, काका मामा चाचा दुख देने वाले को कभी नहीं भूलते, और विश्व के मालिक बनाने वाले बाप को भूल जाते हो। स्त्री बाल बच्चे मामा चाचा मित्र संबंधी सब सब याद आते हैं भूल जाते हैं, उनके लिए तो कहते याद आते हैं, बाकी इस बात को तुम भूलते क्यों हो? तुम्हारी युद्ध इस याद में है। बाबा क्या कह रहे हैं, हमारी लड़ाई किससे? किसी और से नहीं, युद्ध है ही याद की यात्रा में। जितना हो सके याद करना है बच्चों को अपनी उन्नति के लिए। फिर बाबा राय देते हैं, बच्चों ने कहा ना बाबा भूल जाते हैं, तो बाबा ने राय दी बच्चे अपनी उन्नति करनी है तो सवेरे सवेरे उठ करके बाप को याद करो। सैर करनी है तुम छतों पर, बाहर ठंडी हवा में चले जाओ। होता है ना कान में थोड़ा ठंडी हवा जाती है तो नींद आंख खुल जाती है, इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं कि छतों पे जाओ, ठंडी हवा में खुले में जाओ। यहां आकर बैठना कोई जरूरी नहीं, बाहर भी जा सकते हो। याद के लिए बाबा युक्तियां बता रहे हैं। सवेरे का टाइम कोई डर आदि की बात नहीं, बाहर में जाकर पैदल करो। बाबा के समय में तो भाई थोड़ा फिर भी दुनिया बहुत अच्छी थी, और अभी तो अब तो खराब हो गई है। सवेरे तो सब जगह डर भय चिंता होने लग गए। आपस में यही बातें करते रहो, देखे कौन बाबा को जास्ती याद करते हैं। फिर बताना चाहिए कितना समय हमने याद किया, बाकी समय तुम्हारी बुद्धि कहाँ कहाँ गई। इसको कहा जाता है एक दो को उन्नति, एक दो में उन्नति। आप बाहर जाओ सैर करो, सैर में आपसी वार्तालाप क्या होना चाहिए, एक दूसरे को याद कैसे करती, एक दूसरे को अनुभव हम कैसे याद करके उन्नति को पाते हैं। नोट करो कितना समय बाबा को याद किया। बाबा की जो प्रैक्टिस है वो बतलाते हैं। फिर बाबा अपना एक्सपीरियंस सुना रहे, ब्रह्मा बाबा याद में तुम एक घंटा पैदल करो तो क्या होगा, थकेंगे नहीं, याद से तुम्हारे कितने पाप कट जाएंगे। चक्र को तो तुम जानते हो, रात दिन तुमको अब यही बुद्धि में है। हम अभी घर जाते हैं, पुरुषार्थ करते हो। कलयुगी मनुष्यों को जरा भी पता नहीं, कौन सी बात का, कलयुग वालों को जरा भी पता नहीं, किस बात का, हाँ क्या पता नहीं कलयुग वालों को, मुक्ति के लिए कितना भक्ति करते रहते हैं। अनेक मते हैं, तुम ब्राह्मणों की है एक मत, जो ब्राह्मण बनते हैं उन सब की है श्रीमत। हम सब के लिए अलग अलग मत नहीं, दुनिया में जितने धर्म के महात्माएं होंगे शंकराचार्य सबके अलग अलग मते हैं, सब धर्म के नाम पर ही है लेकिन मत सबके अलग अलग, और हम सब बाबा के बच्चों के लिए एक ही श्रीमत। तुम बाप की श्रीमत से देवता बनते हो, देवताओं की कोई श्रीमत नहीं, श्रीमत भगवान की है न कि देवताओं की। श्रीमत अभी ही तुम ब्राह्मणों को मिलती है, भगवान है ही निराकार जो तुमको राजयोग सिखलाते हैं, जिससे तुम अपना राज्य भाग्य ले कितना ऊंचा विश्व का मालिक बनते हो। भक्ति मार्ग के वेद शास्त्र आदि कितने ढेर के ढेर है, कितने वेद शास्त्र। आजकल देखो गूगल में जाओ हर लैंग्वेज में, पहले क्या होता था एक ही भाषा में हुआ करता था, और आजकल जिस भी भाषा में आप लेना चाहो जो भी लेना चाहो बस बटन दबाया हर चीज सामने आने लग गए। इतना भक्तों ने भी क्या कर दिया, इतना सरल कर दिया, और दर्शन भी, यहां बैठे विश्वनाथ जी का दर्शन, श्री राम जी के दर्शन, फलाना दर्शन, वो इतनी, वो भी भक्त आत्माएं भी क्या कर रहे हैं, सरल करते चले जा रहे हैं। इतनी सारी बातें ढेर के ढेर है, परंतु फिर बाबा कहते इतना सब कुछ करने के बाद परंतु क्या होगा, क्या हो सकता परंतु, बाबा कहते परंतु काम की सिर्फ एक गीता ही है। ढेर होंगे उनके पास, लेकिन काम की चीज एक गीता। भगवान आकर राज्यों सिखलाते हैं, उनको ही गीता कहा जाता है। वो भी कौन से वाली गीता? भक्ति की गीता भी क्या है? टैगोर की गीता, गांधी की गीता, अड़गणानंद जी की गीता, फलाने की गीता। बाबा कहते नहीं, रियल गीता जिसमें मैंने राजयोग सिखाया वो सच्ची गीता है, उनको ही गीता कहा जाता है। अभी तुम बाबा से पढ़ते हो जिससे स्वर्ग का राज्य पाते हो। जिसने पढ़ा उसने लिया। ड्रामा में पार्ट है ना, ज्ञान सुनाने वाला ज्ञान का सागर एक बाप है। वह ड्रामा प्लान अनुसार कलयुग के अंत सत्युग के आदि के संगम पर आते हैं, उनका आना भी निश्चित है। ड्रामा का रचयिता होने के बावजूद भी बाबा कहते हैं मेरा पाठ निश्चय निश्चित है, सत्युग आदि के समय कलयुग के अंतिम समय में कोई भी बात में मूंछो नहीं। ऐसा अच्छा टीचर है, सारा स्पष्टीकरण देता है, सारी बातें समझा करके फिर क्या कहता है? फिर क्या कहता है? बच्चे मूंझो नहीं, हर चीज का स्पष्टीकरण, फिर कहेगा मूंझो नहीं। बाप इसमें आकर पढ़ाते हैं और कोई पढ़ा न सके। यह दादा भी, ब्रह्मा बाबा के लिए कहते हैं, यह दादा भी आगे कोई से पढ़ा हुआ होता और भी बहुत उनसे पढ़े होते। किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में होते तो और भी स्टूडेंट्स होते, अकेला थोड़े पढ़ता। बाप तो कहते हैं इन गुरुओं आदि सब का उद्धार करने के लिए मैं आता हूँ, सबका उद्धार करने के लिए। सारी दुनिया उनको उद्धारक समझती है। सारी दुनिया किसको उद्धारक समझती है? गुरु संत महात्माओं को अपने उद्धारक समझती है। और भगवान ने क्या कहा? मैं उनका भी उद्धार करने के लिए आता हूं। तो जरूर काल चक्र में ऐसा समय आया होगा उद्धारक को भी उद्धार करने की भगवान को जरूरत पड़ी। वो अभी का समय देख रहे हैं हम लोग। अभी तुम बच्चों की एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, हम यह बनते हैं। यह है ही नर से नारायण बनने की सत्य कथा। इनकी फिर भक्ति मार्ग में महिमा चलती है, भक्ति मार्ग के रसम चलती आती है। अभी रावण राज्य पूरा होना है, तुम अभी दशहरा आदि में थोड़ी जाएंगे। तुम तो समझते समझाएंगे ये क्या करते हो, दशहरा आदि में क्या करते हो? यह तो बेबीज का काम है। क्या बच्चा होता है ना, पहले खिलौने से खेलता है, फिर बाद में गुस्सा आता है तो उसको थोड़ फोड़ करके उसी खिलौने से खेल रहा था और फिर तोड़ फोड़ करके उसको जला भी देगा, फेंक भी देगा। तो बाबा कहते ये जलाना क्या है, बेबीज का काम है। बड़े बड़े आदमी देखने जाते हैं रावण को कैसे जलाते हैं। होता है हमारे यहाँ भी होता है, बाकायदा फंक्शन होता है, बड़े गेस्ट को बुलाया था, उनके हाथ में रिमोट, आजकल रिमोट से क्या होता है, उसको रावण को जलाया जाता है, मेला लगता है। ये कौन है कोई बता न सके। रावण राज्य है ना, दशहरा आदि में कितनी खुशियां मनाते हैं, फिर मेला, बाकायदा मेला लगता है, रावण को फूंकेंगे, रावण जलने के बाद मेला होता है, खूब खाते पीते हैं। जिसमें रावण को जलाने जाते हैं दुख भी चला आता है। ऐसे नहीं कि रावण खत्म हुआ था दुख खत्म हो गया, दुख भी चला आता है। कुछ भी समझ नहीं है। अभी तुम समझते हो हम कितने बेसमझ थे, कितने बेसमझ थे, जला करके खुश हो रहे थे, बेसमझ थे। रावण ने हमको बेसमझ बना देता है। अभी तुम कहते हो बाबा हम लक्ष्मी नारायण जरूर बनेंगे, हम कोई कम पुरुषार्थ थोड़ी करेंगे। फिर बच्चों ने ज्ञान का नशा चढ़ा, बाबा हम कम पुरुषार्थ थोड़ी करेंगे। एक ही स्कूल है, पढ़ाई बहुत सहज है, बहुत सहज है भाई। ऐसी पढ़ाई, इतनी ऊंची पढ़ाई, इतनी सहजता, सरलता, तरलता से, ऐसी कोई यूनिवर्सिटी पढ़ाई संसार में, विश्व की कोई पढ़ाई नहीं हो सकती। तो बाबा कह रहे इतनी सहज पढ़ाई, बूढ़ी बूढ़ी माताएं कुछ नहीं याद कर सकती, सिर्फ बाप को याद करे। मुख से हे राम कहते हैं ना बाबा, ये बहुत सहज बताते हैं। तुम आत्मा हो, परमात्मा बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। कहाँ चले जाएंगे? शांति धाम और सुख धाम चले जाएंगे। और सब कुछ भूल जाओ, जो कुछ सुना, पढ़ाई का क्या सार है, जो कुछ सुना पढ़ा है सब भूल कर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अभी तक जो अभी मुरली सुनी वो नहीं भूलना है, अभी तक दुनियावी जो बातें पढ़ी है, दुनियावी बातें जो सुनी है, बाबा कहते सब कुछ भूल मुझे याद करो। बाबा से वर्षा जरूर मिलेगा, बाप की याद से ही पाप कट जाते हैं। कितना सहज है, कहते हैं ब्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। तो जरूर इतनी छोटी सी आत्मा होगी ना, डॉक्टर लोग बहुत कोशिश करते हैं आत्मा को देखने की, परंतु बहुत सूक्ष्म है। हट आदि से कोई देख न सके, न हट से देख सकते, न ऑपरेशन से देख सकते हैं। बाप भी ऐसे बिंदी है, कहते हैं जैसे तुम साधारण हो, हम भी साधारण बनकर तुमको पढ़ाता हूँ। किसको क्या पता इन्हों को भगवान कैसे बैठ पढ़ाते होंगे। बाबा कहते हमको देख करके दुनिया थोड़ी समझेगी कि इनको भगवान पढ़ाते। सिंपल साधारण तरीके से श्री कृष्ण पढ़ाते तो सारे अमेरिका, जापान आदि सब तरफ से आ जाए, कृष्ण दिखाई देते हैं आंखों से, तो बाबा कहते सब दूर दूर से आ जाए, उनमें इतनी कशिश है। श्री कृष्ण के साथ प्यार तो सबका है ना, अभी तो तुम बच्चे जानते हो, हम सो बन रहे हैं। श्री कृष्ण है प्रिंस, उन्हें गोद में लेना चाहते हैं तो पुरुषार्थ करना पड़े, कोई बड़ी बात नहीं है। कृष्ण को गोद में लेना, बाबा हमेशा माताओं को कहते ना, माताओं के संकल्प होता है कृष्ण को खिलाएं, गोद में ले, तो बाबा कहते कौन सी बड़ी बात है, बड़ी बात है छोटी बात है, बाबा कहते पुरुषार्थ करो। बाप अपने बच्चों को स्वर्ग का प्रिंस, विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे पढ़ाई का सार है। बताओ भाई सभी, अब इतनी सारी मुरली सुनी, अब इसका सार क्या निकला? पढ़ाई का, पूरी मुरली का, पूरी पढ़ाई का सार है। बाबा कहते दुनिया की सब बातों को छोड़ दो, ऐसे कभी नहीं समझो हमारे पास करोड़ है, लाख है, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। इसीलिए अच्छी रीति से पुरुषार्थ करो। अभी देखा था ना लास्ट ईयर शायद सैन फ्रांसिस में ये आग लगी थी, सब उनके बड़े बड़े बिल्डिंग के बैंक सारे क्या हो रहे थे, सामने धराशायी हो रहे थे, कोई फूंक भी नहीं मार पाता, बाल्टी मग्गा पानी भी नहीं डाल सकता, हो रहा था ना, सब कुछ देख रहे, अपनी ही चीज अपने सामने जाते हुए देख रहे थे। बाबा के पास आते हैं तो बाप उल्हाना देते हैं, 8 मास में आते हो, सुना बाबा क्या कहते, 8 मास के बाद आते हो, और बाप जिससे स्वर्ग की बादशाही मिलती उनसे इतना समय मिले नहीं हो, 8 महीने के बाद बाबा से मिलने आए हो। कहते हैं बाबा फलाना काम था, क्या करे बाबा, पता तो पड़ता है भगवान आया हुआ है, लेकिन क्या करे काम था। तो बाबा क्या कहेंगे, अरे तुम मर जाते तो यहां कैसे आते, यह बहाने थोड़ी चल सकेंगे। बाबा राजयोग सिखा रहे हैं, तुम सीखते नहीं, जिसने बहुत भक्ति की होगी उनको 7 रोष तो क्या, एक सेकेंड में भी तीर लग जाए, सात रोज क्या, आठ महीने क्या, बाबा कहते जो बाबा का पक्का बच्चा हो, एक सेकेंड में उसको क्या हो जाता है, तीर लग जाता है, सेकेंड में विश्व का मालिक बन सकते हैं। खुद अनुभवी बैठा है कौन, ब्रह्मा बाबा, विनाश देखा, चतुर्भुज रूप देखा, बस समझने लगा, अहो हम विश्व के मालिक बनते हैं। साक्षात्कार हुआ, उमंग आया, सब कुछ छोड़ दिया। यहां तुम बच्चों को मालूम पड़ा बाबा आया हुआ है विश्व की बादशाही देने। बाबा पूछते हैं निश्चय कब हुआ, मुरली बाबा के ऊपर निश्चय कब हुआ, तो कहते हैं कितने, हर एक का अपना अपना रिजल्ट है, कोई तो सेकंड में हो जाता, कोई महीने लग जाता, किसी को सालों लग जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, कहते आठ मास हुआ। बाबा ने समझाया है मूल बात है, मूल बात याद और ज्ञान, बाकी तो दीदार कोई काम का नहीं। बाबा को पहचान लिया फिर पढ़ना शुरू करो, तुम भी यह बन जाएंगे। पॉइंट्स मिलती है, कोई को भी समझा सकते हो, बहुत मिठास से समझाओ। बाबा क्या कह रहे, ज्ञान को क्या समझाओ, जैसे प्यारे बाबा समझाते हैं, इतने गुह्य ज्ञान। दुनिया में कहते हैं सच्चा कड़वा होता है, कहते हैं ना दुनिया वाले, सच जो होता है वो कड़वा कहते हैं। और यह भगवान ने सत्यता को कैसे स्पष्ट किया, सत्यता को इतना मिठास के साथ, इतना प्यार से, इतना प्रेम से हम सबको गुट्टी पिला दी, पता पड़ा सच्चाई को। तो बाबा कहते ऐसे हमें भी क्या करना है, बाबा के सत्यता को, सत्य ज्ञान को मिठास से समझाओ। शिव बाबा जो पतित पावन है, कहते मुझे याद करो तो पावन बन, पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। युक्ति से समझाना है, तुम चाहते हो ना गॉड फादर लिबरेट कर स्वीट होम वापिस ले जाए। अच्छा, अब तुम्हारे ऊपर जो कट चढ़ी हुई है ना, उसके लिए बाबा कहते सारी बातें, हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाए, सतयुग की बातें समझाए, पूरा चक्कर लगा करके बाबा कहते अब जो कट चढ़ी है, कट उतरेगी मेरी याद से, मुझे याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली का सार है, सवेरे सवेरे उठ पैदल करते बाप को याद करो। आज बाबा ने हम सबको सवेरे सवेरे पैदल चल करके याद करने के लिए, आपस में यही मीठी रूह रिहान करो कि देखे कौन कितना समय बाप को याद करता है। कहा ना बाबा ने, एक घंटा भी पैदल चलो थकावट नहीं होगी, फिर अपना अनुभव सुनाओ। दूसरी पॉइंट, बाप को पहचान लिया तो फिर कोई बहाना नहीं देगा, पढ़ाई में लग जाना है, मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। बाबा को पहचानना माना बाबा के मुरली को पहचानना। वरदान है सर्व के गुण देखते हुए स्वयं में बाप के गुणों को धारण करने वाले गुण मूर्त भाव। सर्व के गुण देखते हुए स्वयं में बाप के गुणों को धारण करने वाले गुण मूर्त भाव। संगम युग पर जो बच्चे गुणों की माला धारण करते हैं, वही विजय माला में आते हैं। इसीलिए होली हंस बन, सर्व के गुणों को देखो। होली हंस सुना है, दुनिया में आज तक कोई हंस, होली हंस किसी ने देखा नहीं होगा, लेकिन बाबा कहते यहां सब कौन बैठे भाई, हम सब कौन है, बाबा के होली हंस। सर्व के गुणों को देखो, एक बाप के गुणों को स्वयं में धारण करो, ये गुणमाला सभी की गले में पड़ी हुई हो। जो जितने बाप के गुण स्वयं में धारण करते उनके गले में उतनी बड़ी माला पड़ती है। गुणमाला को सिमरण करने से स्वयं भी गुण मूरत बन जाते हैं। इसी की यादगार में देवताएं और शक्तियों के गले में माला दिखाते हैं। और आज का स्लोगन है, साक्षीपन की स्थिति ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। ये तख्त ऐसा है, इसमें निर्णय हमारा डिसीजन पावर क्या होगा, राइट एंड क्विक डिसीजन। तो यथार्थ निर्णय तभी होगा साक्षीपन की स्थिति में, यथार्थ निर्णय का एक तख्त है। आज का व्यक्ति इशारे, अंतर्मुखी होकर कार्य करने से विघ्नों से व्यर्थ संकल्पों से बच जाएंगे, समय भी बहुत बच जाएगा। जो अंतर्मुखी रहते हैं उनमें स्मृति की समर्थी भी आती है और आत्मरूपी नेत्र पावरफुल बनता जाता है, जिससे यदि कोई भी विघ्न आने वाला होगा ये महसूसता आएगी आज कोई पेपर होने वाला है। जितना पहले से मालूम पड़ता जाएगा तो होशियार होने के कारण सफलता को पा लेंगे। ये थे प्यारे बाबा के मधुर मधुर मुरली, मधुर मधुर महावाक्य। और आज ममा की विशेषता, गंभीरता के गुण द्वारा परखने की शक्ति से संपन्न। ऐसे भी ममा को देखे तो गंभीरता की मूरत दिखाई देती थी। ममा गंभीरता की देवी थी। ममा का चित्त सदा शांत और गंभीर था। वे कभी वाहे मुक्ता में नहीं आई। गंभीरता के गुण से उनका मन बुद्धि निर्मल स्वच्छ बन गया। उनके सामने जब भी कोई आता तो वे उसको फौरन परख लेती। परखने के कारण निर्णय करना भी सहज हो जाता। किसी भी भावनाओं को यथार्थ समझने के लिए गंभीरता का गुण चाहिए, लेकिन गंभीरता में रमणीकता गायब न हो, चेहरा सीरियस न हो, सदा मुस्कुराते हुए हरेक के साथ व्यवहार में आना और अपने शांत पवित्र स्वधर्म में स्थित रहना, इसमें हम सबको मीठी ममा के समान बनना है। अच्छा, ओम शांति शांति। प्यारे बाबा के, पहले तो हम घर में आकर के मधुबन बाबा के घर की मुरली, बाबा के घर की विशेषता, ये तो हम वहां लखनऊ में भी बैठे रहते हैं तब भी आकर्षित होता रहता है। लखनऊ है मम्मा बाबा की धरनी। हम तो लखनऊ को लक्की नाव, हमेशा हम लक्की महसूस करते हैं। लखनऊ में प्यारी मम्मा महीना महीना आकर के रहा करती थी और बाबा भी वहां साकार में, बाबा ने भी आकर के उस फुलवाड़ी को सींचा है। तो सबसे पहले लखनऊ में गुलजार दादी जी पहुंचे थे। दादी जी ने सुना है तो हम लोगों को जब भी देखती थी तो दादी को हम कहते थे दादी हम कहां से आए पता है, आपके सेंटर से आए। दादी को कहा करते थे आपके सेंटर से आए, तो दादी कहते मैं पहली बार गई तो कहा कि जो बाहर से लोग आते हैं
वो यहाँ कहाँ रहते हैं, मतलब धर्मशाला भी उनको कुछ पता नहीं था, बाहर से जो लोग आते हैं वो कहाँ रहते हैं। फिर रिक्शे वाले ने कहा धर्मशाला में रहते, धर्मशाला में लेकर के गए। उसके बाद तो पहली बार लखनऊ का अनुभव ऐसा है, दादी कहते हैं हम गए उस समय गोविंद वल्लभ पंत वहां के चीफ मिनिस्टर थे, उनके पास गए, 25 साल की उम्र होगी मेरे ख्याल से, दादी कहते और भी ऐसे बैठे हुए थे कई मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए, वो सीधा आते ही इनके पास पहले आए, और लोग बैठे हुए थे उनके पास नहीं गए, पहले इनके पास। हाँ बताओ देविया। तो दादी ने कहा कि हम भारत को स्वर्ग बनाने आए लेकिन हमको रहने के लिए स्थान चाहिए। आप सोचो जो भारत को स्वर्ग बनाने निकला हो और उसके पास रहने का स्थान ही नहीं। हमको भारत को स्वर्ग बनाना, अपने तन मन धन से हम भारत को स्वर्ग बना रहे, हमें रहने का स्थान दीजिएगा। उस समय दादी जी को वहाँ MLA क्वार्टर है, दारुल शफा उसको कहते हैं, आज भी है वो क्वार्टर। तो दारुल शफा में दादी को 2 साल के लिए वो क्वार्टर मिला। दादी कहते थे 25-30 MLA रेगुलर वहाँ क्लास करते थे। लखनऊ की हिस्ट्री में एक तो ये है और दूसरा गवर्नर हाउस में एक हमारे राजेश्वर भाई वीर बाला बहन गवर्नर हाउस में जॉब करते थे, जिस कारण से गवर्नर से बहुत अच्छा संपर्क, बहुत ईमानदार वफादार। और उनको जो ज्ञान मिला था जापान में जो दादियां गई थी, वो जो झाड़ का चित्र था ना जापान से, वहां से किसी ने गवर्नर को भेजा था कहते। तो गवर्नर के स्टॉप होने के कारण स्टाफ वाले, तो उन्होंने राजेश्वर भाई ने देखा ये क्या चीज है झाड़ का चित्र, एड्रेस देख करके माउंट आबू बाबा के पास पत्र लिखा उन्होंने कि मैं इसके बारे में समझना चाहता हूँ, ये झाड़ के चित्र के बारे में। वो भी जापान से वहां आया हुआ था चित्र लखनऊ गवर्नर के पास। गवर्नर हाउस में उन्होंने ज्ञान लिया, फिर बाबा के पास आए, बाबा ने उनको ज्ञान आदि समझाया। तब से वो बाबा के बहुत अच्छे, बाबा के आज्ञाकारी वफादार दोनों युगल राजेश्वर भाई वीर बाला बहन थे। तब से वो ज्ञान में चलते थे और कई बार एक बाबा की गिफ्ट कहेंगे गवर्नर हाउस में पहली बार प्रदर्शनी होना, गवर्नर को वहां से यहाँ लाना, बहुत सेवाएं की थी, उसका ही बीज हम कहेंगे। और आज भी 3-3 दादियां थी उस समय में, सब दादियां आती थी और चले जाते थे। उस समय छोटा सा यज्ञ था और लखनऊ में जब गवर्नर हाउस की सेवाएं, MLA की सेवाएं होती थी तो सारी दादियां आ करके सेवा करके जाती थी। मम्मा महीना महीना रह करके सेवा करती थी। मम्मा की एक बात सुनाती हूँ मैं। मम्मा जब आती थी, हमारा हजरतगंज सेंटर पुराना सेकेंड फ्लोर पे है, वो सेकेंड फ्लोर बहुत ऊंची ऊंची सीढ़ियां है सेकेंड फ्लोर पे। मम्मा 4 से 5 बजे के बीच में मुरली और गोद देती थी, गोद में लेकर के टोली खिलाती थी। हमारी माताएं अपना अनुभव सुनाती थी, सर्दी दिसंबर और जनवरी का जो महीना सख्त, जो नॉर्थ इंडिया में रहने वालों को पता होगा, दिसंबर जनवरी का जो ठंडी का मौसम होता है, उस ठंडी के मौसम में हम लोग रात को 2 बजे गोद में इतने छोटे छोटे बच्चे होते थे, कंबल पे लपेट करके रात को 1 बजे उठ के खाना वाना बना करके रख करके और उन बच्चों को लपेट करके साइकिल रिक्शा होते थे। रात को 1-2 सर्द रात में आवाजें, कोई सड़क पे कोई होता नहीं था उस समय में, कहते दीदी हमको होश ही नहीं रहता था, दुनिया क्या करेगी, चोर आएगा, ये आएगा, डका, कभी डर नहीं लगता था। उन बच्चों को कंबल में लपेटा, कंबल ओढ़ लिया, रिक्शे पे बैठ करके चले आ रहे। बस वो जो 4 बजे मम्मा जो मुंह में टोली खिलाती थी ना, वो इसका इतना आकर्षण था, वो इतना प्यार था, इतनी वो मम्मा की जो दृष्टि थी उसके पीछे घर वाले क्या कहेंगे वो भी नहीं पता था उनको, उनको होश ही नहीं रहता था। रात को 1 बजे से शुरू होता था घर में, 2 बजे घर से निकल करके 3-3.5 बजे तक सेंटर पहुंचने में लगता था। रिक्शा भी टांगा भी चलते कहां कहां से पहुंच जाते थे। तो मम्मा की वो दृष्टि वो प्यार पा करके सब शुद्ध बुद्ध नहीं रहता था। तो उस समय में देखो ज्ञान बहुत सूक्ष्म था, बहुत थोड़ा सा था मोटा, लेकिन उनकी लगन कैसी थी। और वो भी ठंडी हवाओं में, ठंडी का मौसम होता था, उस समय आकर के मम्मा की मुरली सुनने के लिए लखनऊ में आते थे। और मम्मा इतनी वीर गंभीर, वही हमारी वीर बाला बहन कहती थी, मैं मम्मा की सेवा में रहती थी, मैं देखती थी 24 घंटा मैं साथ में रहती हूँ, मैं देखू मम्मा की कोई एक कमी। कहते एक दिन मैंने सोचा कौन सी एक भी कमी तो मैं नोट करूं, चाहे उनका बैठना हो, खाना हो, पीना हो, चलना हो, बोलना हो। मैंने एक दिन माइन्यूटली चेक किया, कोई इतनी सी कोई कमी मुझे नजर आए। कहते कभी भी किसी भी बात में पूरी दिनचर्या में इतनी सी कमी मम्मा की नजर नहीं आती थी। हम 24 घंटा साथ में रह करके मम्मा को देखते थे, तो ऐसी मम्मा थी। तो मम्मा का मास चल रहा है ना, अचानक मुझे भी मम्मा की वो सारी बातें याद आई। इतनी प्यारी मीठी मम्मा, कथनी और करनी समान मम्मा ने बाबा का एक ऐसा प्रैक्टिकल सैंपल मूर्त। तो उस समय एक और लास्ट बात बताती हूँ, गुलजार दादी जी, हाँ बता, गुलजार दादी जी थी और भी बहुत सारी दादियां तो बहुत सारी थी, शुरू शुरू में थोड़े से सेंटर्स थे। तो ये कहते हमारे राम ऋषि भाई थे, वो भी 9 बार टाइम्स उन दिनों में उसके एडिटर थे, चीफ एडिटर थे। उन्होंने एक भविष्यकार जो हस्त रेखा दी पढ़ लेते ना, साकार बाबा के समय में सारी दादियां बैठी थी, उन्होंने गुलजार दादी तो बहुत छोटी दादियों में गिनी जाती थी। और हमारे सेंटर पे ऐसा एक हजरतगंज सेंटर, एक बड़ा रूम ऐसा है, छोटा रूम ऐसा है, जो क्लास में आने वाले भाई बहने होते थे ना, उनके सब बच्चों को इकट्ठा करके गुलजार दादी जी क्या करती थी, उन बच्चों को खिलाना ना, गीत गाना, उनको डांस कराना, ये काम गुलजार दादी का था। मम्मा दादी बड़ी दादियां दूसरे क्लास में, बड़ों की क्लास आदि होती थी, गुलजार दादी बच्चों के टीचर रूप के रूप में बच्चों को सारा बहलाती करती थी। तो एक दिन ऐसे सारे बहने बैठी हुई, दादियां सारी बैठी हुई, तो वो जो बोले जो भविष्यकार था, उसने और किसी को नहीं, गुलजार दादी छोटी बहन मानी जाती थी उस समय में, भगवान इनकी आंखों से, उसके शब्द है, इनकी आंखों से बहुत सेवा कराएगा। साकार बाबा के समय में कभी सोच भी नहीं सकते थे आगे चल करके बाबा का ऐसा पाठ खुलेगा, ईश्वर इनके द्वारा, खास गुलजार दादी को देख करके कहा, इनके द्वारा विशेष कार्य कराएगा। तो कभी सोचा भी नहीं था कि क्या हो सकता। तो ऐसे वंडरफुल हमारी दादियां थी, वो भविष्य का अज्ञानी, उस ज्ञान नहीं था, नए के रूप में आया हुआ था उसने, उसने देख करके दादी को ऐसे कहा था। और बाबा का पाठ बाद में खोला जो हुआ, हम अभी वर्तमान समय में दादी के ही यादगार में एक गुलजार उपवन बना रहे हैं। और दादियों की तपस्या का ही फल है, मैं तो कहती हूँ। 3 दादियां, मैं जब लखनऊ गई थी, भगवती दादी, सती दादी, कृष्णी दादी, 3 दादियों ने रह करके तपस्या की है। उसी तपस्या का फल अभी निकल रहा है, उसका ही रिजल्ट दे। देखो जब शुरुआत में जैसे सेवाएं ली थी, अभी भी हमने विधानसभा में वहां की 3 बार हमने प्रोग्राम किया, हमारे चीफ सेक्रेटरी बहुत अच्छे संपर्क में थे, 3-3 बार उन्होंने विधानसभा में सारे सेक्रेटरीज के लिए, कमिश्नर्स के लिए, ऑफिसर्स के लिए एक प्रोग्राम करवाया था। तो इस तरह से, और योगी जी भी बहुत अच्छे संपर्क में है बाबा के कार्य में। अभी भी यहाँ आने से मैं 8 दिन पहले मिल करके आई थी, तो निमंत्रण दिया था खास कॉन्फ्रेंस आदि के लिए, कहा है दीदी आएंगे, उन्होंने बैठ करके बताया था। उस समय में लड़ाई आदि हो रही थी ना, सबका अपना समाचार हम लोगों को सुना रहे थे। जब सेकेंड टाइम जब जीत के आए थे, हमने जब बधाई देने गई, तो उनके मुख से निकला था, आप बहनों के आशीर्वाद से मैं दोबारा आया, आप बहनों के आशीर्वाद से। लेकिन सारी शक्तियां मुझे हराने में लगी हुई थी, सारी शक्तियां एक हो गई थी, लहराने में लगी थी, आप बहनों के आशीर्वाद ने मुझे जिताया है, ऐसा शब्द उन्होंने कहा। तो वर्तमान बाबा का यादगार जैसे गुलजार दादी का भी यादगार स्वरूप में एक गुलजार वन बना रहे हैं, वहां पे बिल्कुल अयोध्या रोड पे ही, वहां से 1.5 घंटे का रास्ता अयोध्या रोड है, वहां बाबा का स्थान बन रहा है। अच्छा, ओम शांति।